विवेक का यदि सिंपल सा अर्थ किया जाए, उसका मतलब होता है सही समझ। और अध्यात्म में सही समझ का मतलब होता है वो समझ जो शास्त्र हमको दे रहे हैं, जो वाणी, जो विचार सत्पुरुषों के द्वारा प्रकट हुए हैं, जिसको रेवलेशन बोलते हैं, जिसको आप्त वचन बोलते हैं, जो सीधी ईश्वर की आवाज है या सीधा जो ईश्वर का मार्गदर्शन है, उसके आधार पर जब हमारी बुद्धि का निश्चय सांसारिक निश्चय से हटकर आध्यात्मिक निश्चय बनता है, वो विवेक है। तो सबसे पहले तो हमको अपने बारे में ही गलत समझ है। गीता महाराज जी की वाणी और सारे शास्त्र का जो विश्लेषण है मेरे बारे में, सबसे पहले तो हमको उसको सीखना पड़ता है कि संसारियों के बीच में रहकर संसारी तरीके से मैं अपने आप को क्या समझता हूं और शास्त्र मेरे बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो यदि गीता की बात लें तो गीता में तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तु सः। अर्थात ये जो देह है, स्थूल दिखाई पड़ रही है, इससे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अर्थात देह से परे, देह से सूक्ष्म और देह से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। मनसः तु परा बुद्धि, मन से सूक्ष्म और श्रेष्ठ बुद्धि है। यहां बुद्धि से मतलब है जीवात्मा है, और जीवात्मा से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ वह स्वयं है। या बुद्धे परता तु सः, वो कौन? वो आत्मा, वो परमात्मा, वो इस जीव से भी श्रेष्ठ है। तो ये सीक्वेंस है मेरे बारे में। और यदि महाराज जी की वाणी को देखें हम, तो वहां पर भी यही वर्णन किया गया है, तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। तन से परे इंद्री विकार, ये जो तन है, ये जो देह है, जो आंख से हमको दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं कि मैं देह हूं, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, मेरा साइज ये है, ये मनुष्य की सबसे जो निम्न सोच है ना, घोर अज्ञानता से भरी हुई, ये उस सोच का नतीजा है कि मैं अपने आप को केवल देह समझता हूं। ये मनुष्यों में सबसे निकृष्ट मनुष्य है जिसको अपने बारे में कोई होश ही नहीं, दूर दूर तक अपने बारे में कोई होश नहीं। इसलिए प्रभु कृपा से ये वाणी अवतरित होती है, वाणी में मेरा राज खोला गया है। तन से परे इंद्रिय विकार, देखिए एक एक शब्द का जो भाव होता है, जो मतलब होता है, वहां उसको क्यों प्रयोग किया गया, ये बात देखने वाली होती है। इसी को मनन कहते हैं कि इस शरीर से सूक्ष्म और श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, परे का मतलब यही होता है। लेकिन वो कह रहे इंद्रिय विकार, ये पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां ना, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, जिव्या से रसना स्वाद महसूस करते हैं, नासिका से खुशबू बदबू महसूस करते हैं, और त्वचा से सर्दी गर्मी सख्त मुलायम महसूस करते हैं, इसको स्पर्श कहते हैं। तो सारे संसार के सुख दुख जो हम उठाते हैं वो इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों के भोग विलास ही हैं। लेकिन जो मनुष्य शरीर पे खड़ा हुआ है, अपने आप को देह समझ रहा है, तो ये सारा का सारा जो इंद्रियों का भोग विलास है ये विकार रूप है। और हम संसार में क्या समझते हैं, जितना बढ़िया बिल्डिंग मैं खड़ी कर लूंगा, जितने बढ़िया वस्त्र मैं धारण कर लूंगा, जितना अधिक से अधिक साजो सामान मैं हाई क्वालिटी का घर में इकट्ठा कर लूंगा, उतना ही मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ बड़ा आदमी कहलाऊंगा, ये मेरी अपने बारे में धारणा है। इसीलिए ये बेहोश मनुष्य है, इसको होश ही नहीं अपना कुछ भी। ऐसे मनुष्य को ये वाणी क्या संज्ञा दे रही है वो ध्यान से सुनने की बात है। बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख हो। देखने में ये चार हाथ पर का मनुष्य है, देह इसकी मनुष्य की है, लेकिन इसका जीवन पशु की तरह से है। इसकी जो मन की प्रवृत्तियां हैं वो पशु के समान है, पशु से 1% भी ये श्रेष्ठ नहीं है यदि इसके अंदर विवेक नहीं है। तो अब बताइए कि संसार में हम कितना ईगो लेके जीते हैं, कितना अहंकार हमारे होता है, अपने बिजनेस का, अपनी पोस्ट का, अपने गुणों का, अपने साजो सामान का, हर मामले का कितना अहंकार होता है। मुझको पता ही नहीं है, ये तो सारा सारा मेरे पतन का सामान है। सामाजिक दृष्टि से जिसको मैं उत्थान समझ रहा हूं ये तो मेरे घोर पतन का सामान है, ये तो मेरे मन के अंदर विकारों को बढ़ाने वाला है। क्योंकि जो अध्यात्म विद्या है उसका निर्णय ये है कि ये जो संसार है और ये जो देह है ये एक ही मेटेरियल की बनी हुई है, जिसको पांच तत्व करके कहा गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो चाहे वो ब्रह्मांड है चाहे वो देह है, ये एक ही मेटेरियल का बना हुआ है। और मेटेरियल का हम जानते हैं गुण होते हैं, तो इन पांच तत्वों के गुण क्या हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जो मेरा शारीरिक जीवन है जिसको हम सांसारिक जीवन कहते हैं, तो इस जीवन में मैं इन पांच विकारों की कमाई कर रहा हूं। और जिसका जिसने अपने अहंकार को बहुत बढ़ा लिया है संसार में अपने आप को ऊंचा उठा के, तो उसको होश ही नहीं है मैंने अपना विकार बढ़ाया है, गुण नहीं बढ़ाया है मैंने अपना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो गहरा विकारी मनुष्य है, उसका विकार बहुत गहरा है। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब आदमी तो एक बार, साधारण व्यक्ति तो एक बार को ईश्वर मार्ग पर चलने में वो आसानी से रास्ता तय कर सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति का जिसका अहंकार इतना बढ़ा हुआ हो उसका अध्यात्म मार्ग में चलना सहज नहीं है। तो वाणी जो शब्द जहां प्रयोग किया गया है वाणी में, और ये कोई मनुष्य का शब्द नहीं है, मनुष्य की कविता नहीं है, रचना नहीं है मनुष्य की, ये सीधी ईश्वर की आवाज है। सीधा ईश्वर हमको बता रहा है कि तन से परे इंद्री विकार, जो संसारिक जीवन में हम पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो संसार का सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं, ये केवल विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो संसार का जितना ज्यादा सेवन करेगा उसके अंदर ये विकार उसी रेशियो में ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे कहते हैं इंद्री परे मन विस्तार, इंद्रियों से सूक्ष्म, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। ये मन श्रेष्ठ क्यों है? आप कहोगे मन श्रेष्ठ क्यों है, ये इंद्रियों से अच्छा क्यों है? क्योंकि इंद्रियों का मालिक मन ही है। डिजायर आपकी मन के अंदर उठती है और उस डिजायर की पूर्ति के लिए आप इन कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो। जलेबी खाने की इच्छा हुई तो पैर से चल के मैं मार्केट जाता हूं, हाथों से उनको संभालता हूं, हाथों से ही खाता हूं, कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करता हूं। फिर ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उनको भोगता हूं, जीभ से उसका स्वाद लेता हूं। लेकिन कब? जब मन के अंदर जलेबी खाने की डिजायर उठती है तब। आपका पेट भरा हो, खाने की इच्छा नहीं हो आपकी, मिठाई के प्रति भी तृप्ति हो आपकी, उस समय कोई जलेबी आपके आगे लाके रख दे, आप खाओगे उसको? कहेगा भाई अभी इच्छा नहीं है। जलेबी वही है लेकिन मन के अंदर इच्छा नहीं है तो आप उसको नहीं खाओगे। इसका मतलब इच्छा ही प्रमुख है। मैं इच्छा पूर्ति के लिए ही जी रहा हूं, इच्छा ही मेरे सुख का कारण है। लेकिन ये भूल रहा हूं ये इच्छा उठ कहां रही है? जहां उठती है उसको मन कहते हैं। और इच्छा के लिए मैं अपनी इंद्रियों का और अपनी देह का इस्तेमाल कर रहा हूं और संसार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो पदार्थ है जिसकी इच्छा है वो तो संसार में है ना, तो संसार और देह इन दोनों का मेरे लिए क्या उपयोग है? मेरे लिए एक ही उपयोग है कि मन की इच्छा यदि पूरी हो गई तो मुझे सुख मिलेगा, मन की इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो मुझे दुख मिलेगा। तो मेरा जीवन क्या है? इच्छा पर आधारित है, इसके अलावा मेरा कोई जीवन नहीं है। देर इज एब्सोल्युटली नो लाइफ विदाउट डिजायर। ये मेरी जीवन की वास्तविकता है। लेकिन वाणी क्या कह रही है? इंद्री परे मन विस्तार और मन से परे बुद्ध ठहराई। इस मन से भी जो ऊपर है, मन से जो श्रेष्ठ है, वो कहते हैं बुद्धि है। जिसको महाराज जी समता विलास में जीव कह रहे हैं, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, वो कौन है? जो मन की गति को जानने वाला है, जिस पर मन की इच्छा जब पूर्ण होती है, जिस पर सुख का असर पड़ता है, मन की इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो जिस पर दुख का असर पड़ता है वो बुद्धि। तो बुद्धि जानने वाली सत्ता भी है और बुद्धि निश्चय करने वाली सत्ता भी है। तो मैं जानता हूं कि मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं होती, मैं परेशान हो जाता हूं और कई बार इतना बेचैन हो जाता हूं कि जिसके कारण मेरे इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ रही है मैं उसका मर्डर तक कर देता हूं। मैं इतना परेशान हो जाता हूं कि मैं उसका मर्डर तक करने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो अब बताइए, क्या कभी मैंने अपने बारे में सोचा, मैं हूं क्या और मेरा रोग क्या है? क्या कारण है कि ऐसा गलत कर्म मर्डर जैसा मैं एक आवेश में आके कर जाता हूं और बाद में फंसाता रहता हूं, और जिसकी समाज में भी कितनी बड़ी सजा मिलती है, मुझे कोई होश नहीं होता। तो विकार जब आपके अंदर बढ़ता है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, अहंकार के रूप में, लोभ के रूप में, आप जानते नहीं हो लालच में आदमी क्या क्या बेईमानियां समाज में करता है, कितने भ्रष्टाचार करता है। जो सड़क 10 साल चलनी चाहिए थी वो बनते ही टूटनी शुरू हो जाती है। कौन कौन भ्रष्टाचारी है? अरे मैं मानव ही तो भ्रष्टाचारी हूं उसका, और कौन है? मुझे दूसरे का दुख नजर आ रहा है क्या? तो लोभ जब बढ़ता है तो सब मैं कायदा कानून भूल जाता हूं, सब डिसिप्लिन भूल जाता हूं, भविष्य में उस कर्म का क्या नतीजा निकलेगा वो भी भूल जाता हूं, और लोभ के वशीभूत होकर मैं वो गलतियां कर बैठता हूं जो मुझको जेल में डाल देती है। इसीलिए ये 5 विकार कोई साधारण चीज नहीं है। चाहे सादे से सादा आदमी क्यों ना हो, 100% सत्य बोलने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन 5 विकार उसके अंदर भी हैं। कंपैरेटिवली उसके अंदर कम होंगे और ज्यादा भोगी आदमी के अंदर ज्यादा गहरे होंगे, अंतर इतना होगा, डिग्री का अंतर होगा उसमें बस, लेकिन जीवन उसका भी विकारी है। सादा है तब भी, सत्यवादी है तब भी। तो ये विकार मन के अंदर पल रहे हैं, तो इसलिए वाणी बिल्कुल ठीक निर्णय दे रही है। तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई। इस मन का मालिक मैं हूं, मन से सूक्ष्म श्रेष्ठ मैं हूं। जिसको बुद्धि कह लिए, जिसको जीव कह लिए, जिसको जीवात्मा कह लिए, तो मैं परेशान हो रहा हूं अपनी ही अज्ञानता के कारण। तो बताइए, जो इच्छा मेरे मन में उठ रही है जिसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो मुझको यह सीखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कौन सी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और इच्छा को कंट्रोल करने का कोई मेथड भी तो होगा, कोई तरीका भी तो होगा, वो कौन सिखाएगा मुझे? ये सारा का सारा संसार एक ही प्रोग्राम पर चल रहा है, पूरा विश्व एक ही प्रोग्राम पर चल रहा है कि इच्छाओं का विकास कैसे किया जाए, और इच्छाओं को के विकास करने के पश्चात उसके अनुकूल वस्तुएं कैसे निर्माण की जाए, नए नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जाए, नए नए इनकम के साधन ढूंढे जाए। तो आदमी जिस गहरे माया जाल के कारण परेशान होता है, उसी माया जाल को और गहरा करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये संसारियों का मार्गदर्शन है और संसारियों की करनी है। ये मुझको और विश्व को, मेरे देश को, मेरे समाज को, मेरे परिवार को कहां ले जाके डुबोएगी, मुझे होश ही नहीं इस बात। आंख बंद करके मैं इस माया की चपेट में आता चला जा रहा हूं। इसीलिए पूरे विश्व में जिस राष्ट्र ने भी सबसे ज्यादा आर्थिक तरक्की की, वो राष्ट्र इस दुनिया में मटिया मेट हो गया। चाहे वो यूनान रहा हो, चाहे वो इराक रहा हो, चाहे वो जर्मनी रहा हो, आप देख लीजिए इतिहास उठा के। तो जहां बुद्धि या जीव यानी मैं पूरी तरह से सांसारिक प्राणी बन जाता हूं, तो फिर मैं एक और एडजेक्टिव यूज किया गया है मेरे लिए शास्त्र में, तो फिर मैं पशु से भी नीच बन जाता हूं। शास्त्र पशु से नीच ये एडजेक्टिव हमको क्यों दे रहे हैं, ये डिग्री हमको क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पशु का पतन नहीं होता। पशु के विकार जिस हालत में वो पैदा होता है, विकार उसके वैसे ही रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन मेरे विकार बढ़ जाते हैं। काम क्रोध लोमो अहंकार पशुओं में भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे ये विकार बढ़ जाते हैं गलती करने से। इसीलिए मैं पशु से भी नीच हो जाता हूं, मेरा पतन हो जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? तो वाणी आगे मार्गदर्शन कर रही है। मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन से खुदाई। जो मुझको भी जानने वाला है और मुझसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, बुद्धि परे रतन से खुदाई, इसको गीता कह रही है। या बुद्धे परता तुसाह, बुद्धि से ऊपर, बुद्धि से श्रेष्ठ वह स्वयं है, वो रतन सुखदाई है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। जब ये विश्लेषण करता हूं एक सिस्टम से, तब ये सारी बातें मुझको समझ में आती हैं। इस पर यदि मैं सामाजिक दृष्टि थोप दूं, तब मैं शरीर पे आ गया हूं, जो कुछ है शरीर ही है बस, इसके अलावा मेरी कोई सोच ही नहीं। इसीलिए दैनिक जीवन में मुझको ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं समझता हूं ईश्वर का क्या रोल है, जितना पुरुषार्थ कर लूंगा, जितनी पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, उतना सफल जीवन व्यतीत कर लूंगा मैं। यही बच्चों को सिखाता हूं, यही सोसाइटी में सिखाया जाता है, यही कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, इससे ऊपर तो सोच है ही नहीं किसी। अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर अच्छी तरह से कंजम्पशन होना चाहिए, यही तो है हमारा जीवन। तो ये विकारी जीवन है। तो इसका परिणाम, जो विकारी जीवन है उसका परिणाम क्या होगा? मानसिक बेचैनी और दुख। नेट रिजल्ट जो आपकी लाइफ का निकलने वाला है वो मानसिक बेचैनी और दुख। इसी को जीवन की बर्बादी कहा गया है। अब बताइए ये वाणी कितना सत्य निर्णय कर रही है कि बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सुख होई। वो अपनी जिंदगी एक पशु की तरह बर्बाद कर रहा है, उसको अपना कोई होश नहीं। तो इसीलिए सत्पुरुष इस निर्णय को शास्त्रों में दे रहे हैं। देखो गीता में भी निर्णय दिया गया, महाजी की वाणी तो आज के युग में आई, आज भी वही निर्णय है। निर्णय में कोई चेंज आई क्या? क्योंकि जो सत्ता ईश्वर है, ये गीता भी वहीं से निकली है और ये महाजी की वाणी भी वहीं से निकली है। स्रोत एक ही है, उसका कर्ता एक ही ईश्वर। तो हर युग में वो मुझको गाइड करता है। मैं खुद ही ऐसा अज्ञानी अहंकारी जीव हूं कि सुनता ही नहीं ईश्वर की। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं, देखो महर्षि रमण के पास एक व्यक्ति गया, उनसे कहता है कि जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं गुरु रूप में, ऐसे ही अन्य भी जगह कोई गुरु बैठा हो तो क्या उस पर भी श्रद्धा लाई जा सकती है? जैसे आपके प्रति हमारी श्रद्धा है, ऐसे दूसरा गुरु बैठा है उसके प्रति भी क्या ऐसी समर्पण किया जा सकता है? भाव उसका ये कहने का। अब महर्षि रमण समझ रहे हैं ये गुरु को देह समझ रहा है, एक यहां बैठा है एक वहां बैठा है। तो महर्षि रमण उसको क्लियर करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। और महाराज जी अपने शिष्यों को कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ। सतगुरु अंदर निवास कर रहा है, अंदर कौन शरीर निवास करेगा क्या? अंदर वही आत्म सत्ता है, वो चेतन सत्ता है जिसको हम परमेश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। तो वही सत्ता जिसको हम नाम रूपधारी गुरु कह रहे हैं, जैसे हम मंगत नाम लेते हैं गुरु का, शरीर उनका रूप है, लेकिन महाजी कहते हैं कि जो आत्मलीन है वही गुरु हो सकता है। आत्मलीन का मतलब क्या हुआ? जो जीव भाव ईश्वर में लीन हो गया हो, इसका मतलब वो खुद ईश्वर ही बन गया हो। तो इस देह से जीव भी बोलता है और इस देह से ईश्वर भी बोलता है। मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूं, मैं जीव, मेरी लिमिटेड सोच है, लिमिटेड समझ है मेरे अंदर, लिमिटेड कर्म कर सकता हूं। और ईश्वर के अंदर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड समझ है, अनलिमिटेड सोच है और अनलिमिटेड कर्म कर सकता है। तो वही ईश्वर हर युग में वाणी प्रकट कर रहा है, कभी वेद के रूप में, कभी नानक वाणी के रूप में, कभी गीता के रूप में, कभी संत प्रकाश ग्रंथ के रूप में। स्रोत एक ही है, कर्ता उसका एक ही है। अब बताइए कि मैं इसको समझता हूं, मैं ईश्वर में ही भेदभाव कर देता हूं, एक हनुमान जी ईश्वर हैं, एक राम ईश्वर हैं, एक कृष्ण जी ईश्वर हैं, मैं इसको मानता हूं उसको नहीं मानता हूं, मैं इस गुरु का चेला हूं ये उस गुरु का चेला है, हर मामले में मैं कंफ्यूज हूं, कोई निर्णय नहीं है। शास्त्रों में बिल्कुल करेक्ट निर्णय करेक्ट किया हुआ होता है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ मेरी समझ में। यदि मैं नकली गुरु धारण कर लिया तो वो मुझे गलत समझ पढ़ा देता है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु है, याद रखिए, और वो परमेश्वर है। इसलिए ऋषि ऋषि में भेद नहीं होता, चार वेद ऋषि वाणी ही तो है, लेकिन क्या वो गुरु गुरु में भेद करती है क्या? जिसको भी ईश्वर प्राप्त होता है तो ईश्वर क्या छह तरह का नजर आता है लोगों को? उस ईश्वर का नाम ही तो समता है, और क्या है समता? कहते हैं सम तत्व को, वो सत्ता, वो तत्व जो सदैव से ही और सदैव काल तक एक जैसा ही रहेगा, उसको कहते हैं समतत्व, समता। वो है ईश्वर, वो है गुरु। तो मैं जब अध्यात्म मार्ग पर चलता हूं तो मेरा गुरु वही है। इसीलिए आपका मार्गदर्शन मनुष्य नहीं करता, आपका मार्गदर्शन वाणी करती है, आपका मार्गदर्शन शास्त्र कहता है करता है। इसलिए गुरु वाणी खुद गुरु है, क्योंकि फिजिकली गुरु आपके पास कब तक बैठा रहेगा, कब तक समझाता रहेगा आपको? अल्टीमेटली आपने वाणी को ही समझना है। तो गुरु तो एक आदर्श पेश करके संसार से विदा हो जाता है, वाणी प्रकट कर जाता है, जीवन पेश कर जाता है कि किस प्रकार से तूने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाकर मर्यादा में रहते हुए संसारिक कर्म भी करने और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी तूने तय करना है। तेरे जीवन का उद्देश्य संसारिक कर्म सही प्रकार से करना नहीं है, ये इस उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुआ, इस एम के लिए पैदा नहीं हुआ। तूने इस माया रूपी बंधन से मुक्त होना है, और जो मेरा मन है यही माया है, सारी वासना इसी के अंदर पल रही है। तो इसीलिए मैंने इस मन के इलाज के लिए गुरु के मार्गदर्शन को जीवन में अपनाना है, उसको सीखना है। तो धीरे धीरे मेरी बात ये समझ में आने लगती है कि ये जो इंद्रिय भोगों का जीवन है ये विकारी जीवन है, ये जिंदगी को बर्बाद करने वाला जीवन है। इसीलिए इंद्रियों का उपयोग देह का काम चलाने के लिए किया जाता है। इसको खाने की जरूरत है, खाना दो इसको, वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र दो इसको, रहने की जगह चाहिए इसको, शेल्टर दो इसको। तो आवश्यकता जो जीवन के लिए है उसकी पूर्ति के लिए हम कर्म इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारा एम भोग विलास और सुख प्राप्ति बन जाता है जब, तब हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमको यह पता नहीं है पूरी प्रकृति का यह कानून है, हर सुख दुख में बदल जाता है, ये ईश्वरीय कानून है, याद रखिए। इसलिए इसको द्वंद रूपी जगत कहा जाता है। द्वंद कहते हैं जोड़ा जो सदैव संग रहता है, संग ही नहीं रहता जिनमें सदैव संघर्ष होता रहता है। तो सुख दुख में सदैव संघर्ष होता रहता है, अर्थात सुख धीरे धीरे दुख में बदलता रहता है और दुख धीरे धीरे फिर सुख में बदलता रहता है। जैसे आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, पहले चला करती थी जिसमें एक पेंडुलम हिलता रहता था, तो पेंडुलम की गति क्या होती है, एक तरफ पहुंचता है और एक क्लाइमैक्स पे जब पहुंचता है वहां से फिर ये वापस लौटना शुरू हो जाता है। तो यही है, सुख की गति है एक, लेकिन सुख जो गति है उसकी एक गति उसकी खत्म होने वाली है, वही सुख वहां से फिर दुख में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पेंडुलम के द्वारा जो हम समय नापते जिसको काल कहते हैं, ये काल की गति है। और काल का मतलब सब जानते हैं कि मृत्यु भी होता है। इसीलिए जो सुख दुख का जो जीवन है ये मृत्यु रूप है, ये मुझको काल के नजदीक ले जाता है, मृत्यु के नजदीक ले जाता है। ये जीवन लीला मेरी खत्म हो जाती है, लेकिन जीवन लीला खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं देह कभी था ही नहीं, सदैव से मैं जीव हूं और मन मेरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर मर जाता है और ये जो मन जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें जो वासना पल रही है, ये वासना नए शरीर का निर्माण कर लेती है और मैं नए शरीर में वही जीव रहता हूं, मेरा ईश्वर भी संग रहता है। और नए शरीर में मुझको पूर्व कर्मों का फल फिर भोगना ही पड़ता है प्रारब्ध के रूप में। इसीलिए जब आप गुलाम हो, प्रारब्ध के अनुसार आपका जीवन क्रिया चलनी है, तो बताइए समझ रहा हूं मैं आजाद हूं। प्रैक्टिकल फैक्ट ये है मेरे बारे में कि मैं पराधीन हूं, इसलिए जन्म होते ही आपके साथ जन्म पत्री बांध दी जाती थी, बांध दी जाती। जब दिखाओ किसी पंडित को जी अच्छा जानकार है जन्म पत्री का, तो बता देगा तेरा जीवन कैसे बीतेगा, तो कहां है स्वतंत्र तू? स्वतंत्र है तू तो, किस मामले में? एक ही मामले में स्वतंत्र है, चाहे तू मन के अनुसार चले और नीचे अधोगति की तरफ जाए, या तू गुरु के हिसाब से चले जो ईश्वर है, तू निरंतर ईश्वर की तरफ जाए। तेरे नीचे मन है और तेरे ऊपर ईश्वर है, दोनों अंदर इस देह के अंदर ही मौजूद है। मन भी इस देह के अंदर मौजूद है और ईश्वर सत्ता भी इस देह के अंदर ही मौजूद है। जिसने भी ईश्वर प्राप्ति की इस देह के अंदर ही की है। तभी तो आप कोई मरता है तो उसकी कपाल क्रिया करते हो, क्या करते हो कपाल क्रिया में, कि ये जो चोटी का स्थान है, जो ब्रह्मांड है, जो स्वर्ग लोक है आपका, ये जो मोक्ष द्वार है, इसको आप बांस से फोड़ते हो, इसकी हम सदगति कर देते हैं, अब इसको मोक्ष मिल गया, ये जीव जो है वो ईश्वर में विलीन हो गया। ऐसे मुफ्त आगे काम करते रहते हैं। ये दसवां द्वार तो मैंने जीते ही खोलना था, जिसमें ईश्वर का स्थान है। गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अंदर साधना करनी थी और बाहर संसार में संयम और सादगी का मैंने जीवन व्यतीत करना था, ताकि भोगों के प्रति मेरी भावना गहरी ना होने पाए, उनसे मन के अंदर निवृत्ति प्राप्त हो, धीरे धीरे उनके प्रति मेरी आसक्ति है वो कमजोर होती रहे। जैसे जैसे आयु बढ़े, संसार के भोगों के प्रति आसक्ति मेरी कमजोर पड़ती रहे, तभी आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जिसकी संसार के भोगों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो ईश्वर से उतना ही दूर होता चला जाएगा। इसीलिए सत्पुरुष ये विज्ञान आपको समझाते हैं, बुद्धि परे रतन सुखदाई, वो सुखदाई रत्न है, वो ऐसा ईश्वर है जो जीव उसका बोध इस देह के अंदर कर लेता है, मन के अंदर से हर प्रकार की कामना खत्म हो जाती है, शांत चित्त हो जाता है, उसके पास फिर लोग जाना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं। महाजी जंगलों में बैठे होते थे, यहां भी केला घाट यहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। 4 महीने बरसात के यहां कितनी बरसात होती है। महाजी का टेंट वहां लगाया गया था केला घाट पे, जब यहां पर आबादी नहीं हुआ करती थी। शहर से 14-15 किलोमीटर दूर ये स्थान, जंगली जानवर जहां रहते हों, तो वहां गुरु निवास कर रहा है। लेकिन देहरादून से लोग वहां भी मिलने चले आते थे। बरेली से डॉक्टर भीमसेन जी भी यहां मिलने चले आए थे। अब बताइए, गुरु जंगल में निवास कर रहा है, उसे कोई भय नहीं है, और मैं मानसिक शांति के लिए जंगल में भी उनके पास मिलने चले आ रहा हूं। क्या कारण है? ऋषियों की इतनी कीमत कैसे बढ़ जाती है? उनके पास तो कोई सुख का साधन ही नहीं होता, और आज हम लोग बैठे हैं तो उन्हीं के कारण तो बैठे हैं यहां पर। जिन्होंने सारा जीवन जंगल में व्यतीत किया, उनके कारण आज हम यहां बैठे हुए हैं अपना घर छोड़ के। हम क्यों नहीं सोचते इस बात के लिए, हमें यहां आके क्यों ठंडक मिलती है, क्यों शांति मिलती है? घर जाके यहां से जाने के बाद पता लगता है घर में कितनी तपिश है। यहां 15 दिन रह जाओ, फिर पता लगेगा घर में कितनी तपिश है। जब घर में रहते हो घर सुहाना लगता है, तो लेकिन यहां से जाओगे तब पता लगेगा कि यहां चैन था, यहां ठंडक थी, यहां शांति थी, इसके मुकाबले में घर में बड़ी बेचैनी। मानसिक बेचैनी का एहसास तब होता है जब दोनों कंडीशन आपके सामने होती है, आपका अनुभव सामने होता है, तब पता लगता है कि ऋषियों का जीवन प्रेरणादायक है। इसीलिए ऋषियों का जीवन आपको ईश्वर की ओर ले जाता है, ईश्वर भक्ति सिखाता है। मन करता है आपका घर पे रहकर भी कि प्रेम से अंदर बैठ के प्रभु का जाप करूं, प्रभु से प्रार्थना करूं, वो आनंद रूप है, वो शांति रूप है। तो वाणी ऐसे ही नहीं कर रही है, बुद्धि परे रतन सुखदाई, वाणी ऐसे ही नहीं कर रही है। क्योंकि मैं तो आपको झूठ भी सिखा सकता हूं, मेरे पीछे कोई स्वार्थ है तो आपको झूठ भी सिखा सकता हूं, आपको बहका भी सकता हूं। नकली गुरु यही तो करते हैं, लेकिन वाणी तो बहकाने वाली नहीं है, वो तो सत्य निर्णय प्रकट कर रहे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जीव के लिए सुखदाई रत्न ईश्वर है, और दुखदाई रत्न क्या है इस देह के अंदर? मन है। इसीलिए जब ये शास्त्र विवेक के अनुसार जो समझ ये शास्त्र दे रहा है, इसका थोड़ा सा वर्णन मैंने आकर आगे किया, तो इस विवेक के अनुसार जब मैं जीवन जीता हूं तब मैं ईश्वर का प्रेमी बन जाता हूं, जब संसारी समझ के अनुसार जीवन व्यतीत करता हूं तब मैं माया का प्रेमी बन जाता हूं, मेरी जो मानसिक बेचैनी है वो बढ़ जाती है, वो विकसित हो जाती है, 5 विकार बढ़ जाते हैं, और अपना पतन करके मैं संसार से विदा होता हूं, जो मेरे जीवन का कंप्लीट फेलियर है। और इस फेलियर को मैं बच्चों को सिखाता हूं तो विकास कर, तो मैं खुद मूर्ख हूं, बच्चों को भी मूर्ख बना देता हूं, ये होश ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जिसका गुरु नहीं उसकी गति नहीं, जिंदगी की समझ ही कोई नहीं उसकी, वो दिशा उसकी गलत होगी, उसका जीवन का जो मूवमेंट है, जो गति है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो इसलिए इंसान वास्तव में वो भाग्यशाली है जिसको पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला है, और जिसने उस ज्ञान को सीख कर समझ कर उसके अनुसार ये मानव जन्म व्यतीत करने की कोशिश की है, तो वो विवेकवान पुरुष है, उसका सफल जीवन व्यतीत होता है। ओम ग्रंथ सत्यम सर्वदा।